क्रांति अब एक नई ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो पूरा सफर हमारा रहा है, जहां से हमने शुरुआत की थी और जिस तरह से अब आप भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हर बार एक नई चीज सामने आती है, हर बार एक नया परिपेक्ष, नया आस्पेक्ट सामने आता है। और हमने हर बार ये कहा है कि ये जो भी ज्ञान इस कार्यक्रम में हम और आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, वो सीधा परमपिता परमात्मा की तरफ से आ रहा है। तो आज से हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, जहां हर रोज हम आपके साथ उन्हीं जो सत वचन है, जो अमृत वाणी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, जिसे हम प्यार से मुरली बुलाते हैं, क्योंकि वो मुरली है जो बाबा की मुरली है, जो शिव बाबा खुद अपने वचन कहते हैं, अपनी बात आप तक देते हैं, और वो ज्ञान जो हमें जीवन में जिस परिवर्तन को हम ढूंढ रहे हैं वो दिलवाता है। कैसे ये मुरली आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है, आज इस श्रृंखला से शुरू करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी, जो कि मानेसर में ओम शांति रिट्रीट सेंटर को भी हेड कर रही हैं, और आप में से ज्यादातर लोग अब ओआरसी के बारे में जानते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, ओम शांति। आशा बहन, जब मुरली की बात करते हैं, हम हर बार ये कहते आ रहे हैं कि सेंटर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो अमृत वाणी, हमारे एक अमृत की बूंद जो जिस तरह से हमारे हर रोज मन में पड़ती है, तो हमें जीवन का सूत्र रोज का मिल जाता है। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मुरली का इतिहास क्या है और क्यों इसे मुरली कहा गया।
मुरली वास्तव में है ये भगवत वाणी, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जिन्हें हम ज्ञान का सागर कहते हैं, ज्ञान दिया तो अवश्य कोई माध्यम से दिया, और वो माध्यम आप लोगों को बताया गया कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। तो जो शिव बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं उसका नाम है मुरली। और ये जो मुरली है ये अपने आप में एक कंप्लीट चीज है। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति होता है, आप उसकी बात को बार बार सुनना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा जिनके साथ हमारा इतना प्यार है, और जो परिवार के साथ, हम बच्चों के साथ बैठ करके जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, तो आप सोचो उसे सुनने के लिए कितनी ना उत्कंठा होती होगी, और बार 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 सुनने का मन करता है। इसी मुरली का गायन है जो गोप गोपियां दौड़े दौड़े चले जाते थे। वास्तव में वो कोई काठ की मुरली नहीं होती है, वो तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें जो आम मनुष्य नहीं दे सकता।
बिल्कुल, और हमारे कष्टों के निवारण की बात कहता है, हमें वो रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता कि हम इस मायाजाल से छूटेंगे कैसे।
तो वो ज्ञान कैसे दिया गया, किस रीति से दिया गया, वो आप मुरली के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसको बाद में लिपिबद्ध लिटरेचर के रूप से किया गया। लेकिन जो ओरिजिनल महावाक्य हैं, वो अपने आप में इतने न्यारे, इतने प्यारे, इतने निराले हैं, जो सुने बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। और रोज लोग दौड़े दौड़े जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, आप देखेंगे सवेरे सवेरे जो हमारा क्लास लगता है फुल होता है, जहां भाई बहन पहुंचे होते हैं और उन महावाक्यों को सुनने के लिए उत्कंठा रखते हैं। तो मुरली के अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, अगर आप इसको 20 बार भी पढ़ो ना, तो आपको हर बार नई बात पता लगेगी। हर बार
बिल्कुल, हर शब्द जो है हर बार एक आपकी सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो जाता है। अच्छा, एक और बात आशा बहन, जब हम मुरली सुनते हैं, मतलब जितने लोग अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनसे भी, उनका भी अनुभव यही है कि जैसे जब भी, जैसे ही बाप दादा की बात करते हैं, हर बार जब बाबा है बाप बोलते हैं कि बाप दादा का प्यार, तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार का एक हिस्सा होने का, कि हम जिस परिवार को तलाश रहे थे, एक तो हमारा ये शारीरिक ये भौतिक परिवार है जो इस जीवन का है, एक जो कि इटर्नल है, वो रिश्ता जो इटर्नल, वो उसका एहसास बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वो एहसास कैसे हमें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
बाबा जब मुरली चलाते हैं और हम बच्चे उसको सुनते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, डायरेक्ट जब आप वे महावाक्य सुनते हैं, आपको इतना डीपली टच करते हैं, वही बात कोई और आपको कहेगा तो आपको शायद लगे ना भी लगे, लेकिन जब उन वाइब्रेशंस के साथ जब बाबा बोलते हैं तो उसके साथ साथ वो शक्ति और वो वाइब्रेशंस भी होते हैं, उस समय की जो अनुभूति होती है ना, अच्छे से अच्छा व्यक्ति कोई डिसीशन उस समय बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्प करना है, ऐसा कर सकेंगे, ये नहीं होगा क्या, तो समझना क्यों नहीं होगा।
बिल्कुल
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी हमको ताकत भी मिलती है।
बिल्कुल, तो हमारा प्रयास यही है इस श्रृंखला में कि हम किसी खास, हर बार किसी विशेष विषय पर मुरली के जो एक्सर्प्ट्स हैं, जो बाबा ने समय समय पर कहे गए हैं, वो शब्द, वो बातें, वो महावाक्य, उन्हें हम आपके साथ शेयर करें। तो आशा बहन, आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं?
मैं सोचती हूँ कि कुछ एक्सर्प्ट्स जो बाबा ने हम बच्चों को पहला पहला वरदान दिया है, बाबा का पहला पहला वरदान है कि जैसे मैं पवित्रता का सागर हूँ, ऐसे आप बच्चे भी बेसिकली पवित्र हो, अपवित्र नहीं हो, पवित्र हो। तो पवित्र बनो, योगी बनो, ये हमारा पहला पहला वरदान है। तो पवित्रता की परिभाषा क्या है? लोग सामान्य रीत से सोचते हैं कि भई अपने आप को नहला धुला लो, स्वच्छ साफ कर लो, पवित्रता
शुद्ध हो गया। हाँ।
शुद्ध हो गया। लेकिन बाबा उसको क्या कहते हैं, वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी, जिसकी बहुत जबरदस्त डेप्थ है। बाबा हमको ये भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो तो चेक करो। तो आज उसी शब्द से मैं शुरू कर रही हूं। चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। आप अपने व्यक्तित्व में अन्य सब चीजों को निखारना चाहते हैं, क्या कभी आपका ध्यान इस बात पर भी जाता है कि मुझे अपनी प्यूरिटी को भी इतना निखारना है? मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्यूरिटी है। आपका मन, आपकी वाणी, आपके कर्म, और तो और मन में जो संकल्प आ रहे हैं उसका भी जो बीज है वो हमारी वृत्तियां हैं। तो वृत्ति में, आपकी दृष्टि में, वो पवित्रता है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। अब आपने नोटिस किया होगा कि बाबा मनसा प्यूरिटी में क्या बता रहे हैं, दो प्रमुख बातें बताई हैं। एक है कि सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, और दूसरा है सदा रखो। आज हमारी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो शुभ भावना आप भी रखती हैं, मैं भी रखती हूं, लेकिन कल को कुछ अनबन हो जाए तो क्या सच में मेरी आपके प्रति शुभ भावना रहती है?
वर्ल्डली तो हम शायद कह दें, ऊपर से तो हम कह दें कि हाँ मैं शुभकामना शुभ भावना रख रही हूं मैं, लेकिन इंटरनली देखना बहुत जरूरी है कि इंटरनल जो हमारे थॉट्स हैं वो कहां पे खड़े हैं।
होता ये है कि हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, उसने जो किया उसके साथ, मैं जो करती मेरे साथ, हम उसको एक किनारे कर देते हैं, लेकिन ये भी चीज जो है मेरी कॉन्शियसनेस में तो आ जाती है।
वही न्यूट्रल हो जाना, इग्नोर कर देना। ओके, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता, कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनके प्रति अब कोई रिएक्शन भी नहीं करता, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट में एक कोल्डनेस आ गई। हाँ,
बीज तो है ना, और वो मेरी कॉन्शियसनेस में अगर रहेगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकलता जरूर है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपको शुभ भावना ऐसी रखनी जो सदाकालीन हो, चाहे वो आपका मित्र है या न भी मित्र है, चाहे वो आपके साथ बुरा भी कर रहा है।
क्योंकि इनफैक्ट अगर ये भी बात अब तो समझ में आती है इस ज्ञान में रहते हुए आशा बहन, कि जो आज हमारा मित्र है या आज हमारा दुश्मन है, वो कब हमारा मित्र बन जाएगा हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने ही तो लेट गो करनी है अपने उन थॉट्स को।
कार्मिक अकाउंट्स तो मुझे क्लियर करने पड़ेंगे ना, और उसमें एक बात और हो जाती है, अगर मैं उन बातों को अपने ध्यान पर रख लेती हूँ, कॉन्शियसनेस में ले आती हूँ, तो मैं उस व्यक्ति के प्रति सच्चाई से शुभ भावना नहीं रख रही हूँ। कई बार हम कहते हैं ना, भाई वो चाहे जो मर्जी करे, मैं तो शुभ भावनाएं रख रही हूँ। ये जो हमारा शब्द है ना, वो चाहे जो मर्जी करे, वो ट्रिकी वर्ड है। वो एक दीवार खड़ी कर देता है, जो मैं कितनी शुभ भावना रखूंगी ना, दीवार से टकराएगी, उस तक पहुंचेगी नहीं। तब अगर हम इस समय परमात्मा का भी साथ लें, क्योंकि परमात्मा तो सर्व आत्माओं के पिता है ना, मेरे भी हैं तो दूसरे के भी हैं, सर्व के हैं, न्यूट्रल हैं, तो परमात्मा का साथ लेना अर्थात उनके साथ योग युक्त हों, वे बीज रूप हैं, तो बीज से उन आत्मा तक अवश्य मेरे संकल्प पहुंचेंगे और शनै शनै ये चीज मेरी ठीक होती चली जाए। इसमें समय लगता है,
बिल्कुल।
आई हैव टू बी पेशेंट। जैसे कई बार हम लोग बचपन में, आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, बीज बोते थे आम का और दो दिन बाद खोल करके देखते थे उगा क्यों नहीं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, भाई मैं इतनी शुभ भावना रखती हूँ, रिजल्ट तो कुछ आता नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है। तब बाबा ने कहा, सदा भी रखो और सर्व के प्रति भी रखो।
अच्छा, यहाँ पे एक और जो बात की, सद्भावना के साथ साथ सद्कामना भी, ये भी कहा कि भावना तो मेरा उनके साथ जो रिलेशनशिप है, लेकिन कामना मेरे ख्याल से उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी सक्सेस के लिए।
यस, ये है शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना मुझे अपनी भी रखनी है और उस आत्मा के प्रति भी रखनी है, और शुभ कामना मींस लेट हर प्रोग्रेस,
लेट देम गो।
यस, वो आगे बढ़ती जाए, उसका अपना हिसाब किताब, मेरा अपना हिसाब, उसका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। इस बात को बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। ठीक है, आगे चलते हैं। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। कितनी डेप्थ है। कल्याण की भावना, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, ये हम लोग सब कहते हैं, लेकिन क्या मैं पॉजिटिव ये सोचती हूं कि इसका कल्याण हो। मैं किसी को तंग नहीं करती, वो तो राइट, करना भी नहीं चाहिए एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल उसमें आते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊंचा उठना है। तो क्या मेरी ये भावना रहती है इसका कल्याण हो।
एक्चुअली डेफिनेटली लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि ठीक है, मेरे को जिनसे प्रॉब्लम है मैं उनके प्रति, उनको कुछ कहूंगी नहीं, या उनके प्रति अपने मन में कोई भावना नहीं रखूंगी, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैं उनको ब्लेसिंग्स दूं। वो मैं नहीं कर सकती,
वो नहीं कर सकते
बहुत बार। तो ये एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है कि अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम उनके लिए अच्छा सोचने लग जाए।
लेकिन यही करना है, करना तो यही होगा ना। क्यों? क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं और मेरा वही काम है जो परमात्मा का है, और मैं परमात्मा के कार्य में अगर सहयोगी हूं, तो मुझे अपनी उन पेटी फीलिंग से ऊपर उठना पड़ेगा।
बिल्कुल, वेरी ट्रू।
होता ये डिफिकल्ट है। यू नीड टू हैव अटेंशन। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दो तीन बार करोगे उसके बाद आप रिवर्ट हो जाओगे, लेकिन नहीं, मेरे करते चलो और उसका रिजल्ट निकलता अवश्य है। फिर है रहम की भावना। चलो उसका किया उसके साथ है, बी काइंड टू हर। वो अपनी कमजोरी के वशीभूत है। तो बाबा कहते हैं जब कोई किसी चीज के वशीभूत हो जाता है तो बेचारे का अपना कंट्रोल तो नहीं रहता ना, तो रहम की भावना। मान लो वो ईर्षा द्वेष आपसे करते, मान लो आपसे क्रोध करते हैं, ये रहम रखो। बेचारे अपनी कमजोरियों के वशीभूत है, कमजोरियों उनके ऊपर इतनी हावी है, रहम की भावना। दातापन की भावना, योर डिफिकल्ट है, दाता में उसको और देना,
वही ब्लेसिंग देना या वो
और डिफिकल्ट है, लेकिन हम लेने वाले तो नहीं है ना, हमारा काम क्या है, देना। दैवी संस्कृति के हैं, और जब परमात्मा हमारा पिता दाता है, कौन सा मैं अपनी ओर से दे रही हूँ, जो उसका दिया हुआ है वही तो दे रही हूँ ना। जब हम अपने मन को इतना अच्छा बना लेते हैं तो हमारी भावनाएं कितनी अच्छी शुद्ध बन जाती हैं, जो कि अनुभव करने की चीज है। और आगे सुनो, और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए या फरिश्ता रूप दिखाई दे। व्यक्ति मुझे प्यूरिटी, दृष्टि की प्यूरिटी क्या है कि मैं आपको सदा आत्मा रूप में देखूं, ये ना देखूं आपका धर्म क्या, आपकी जाति क्या है, आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, ये नहीं। जो आप हैं, आप तो आत्मा है ना, तो क्या आत्मिक रूप मुझे सदा देखने में आता है? अगर मुझे दैहिक रूप देखने में आएगा और देह से संबंधी जो चीजें आपने संसार से ली हैं वो देखने में आएंगी, तो स्वाभाविक है मेरी मानसिक पवित्रता नहीं रह सकती,
दृष्टि की भी पवित्रता नहीं रहती,
वो अपवित्र हो जाएगा। फिर वो सारी बातें आएंगी, आकर्षण की बात आएगी, कहीं लगाव की बात आएगी, कहीं झुकाव की बात आएगी, कहीं कुछ होगा,
कहीं हर्ट होने की बात आएगी।
हर्ट
भी तभी होंगे क्योंकि हम लगाव उनके दैहिक रूप से करें।
यस, तो इसलिए हमें आत्म रूप से संबंध अपना रखना है, उस स्पिरिचुअल लेवल पर रखना। बाबा कहते चाहे वो फरिश्ता नहीं भी बना है, जैसे हम लोग भी तो फैमिली है ना, आपस में आप भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूं, तो मैं सोचती हूं जैसे मैं पढ़ रही हूं ये भी तो पढ़ रही है ना, ये क्यों नहीं बदल जाती? तो ये तो फरिश्ता बनी नहीं, और मुझसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं बन जाऊं। तो बाबा कहते चलो वो नहीं भी अगर हुआ है, आपका काम क्या है, आप अपने रोल को क्यों भूल रहे हो? जो आपको करना है वो आपको करना है। वो क्या है? मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। ये हमारे संबंध से कृति को बाबा ने कितना विस्तार कर दिया। कृति इज नॉट मियरली योर एक्शंस, कृति ही मीन्स योर रिलेशनशिप्स, योर कम्युनिकेशन। उसमें बाबा कहते हैं कि कृति में भी आपको सदा सबको स्नेह देना है और सुख देना है।
बिल्कुल, तो जहां व्यवहार की बात आती है, जहां तक हम थॉट्स में होते हैं, विचारों में हम कई बार होते हैं ऐसे कि ठीक है विचारों में हम उनके साथ हैं, लेकिन जैसे ही कर्म की तरफ आते हैं हम फिर अपने वो जो वापस जो संस्कार है उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ जो अनुभव है ये बहुत जरूरी है।
ये कितनी अच्छी चीज है भाई, हर एक को सदा सुख दो, ये तो अच्छी बात है ना। मैं किसी और के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना, अगर मैं लोगों को स्नेह दूंगी, सुख दूंगी, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरे अपने संस्कार अच्छे बनेंगे ना, मेरी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। फिर आगे बाबा कहते हैं चाहे दूसरा स्नेह दे या न भी दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। कई बार ऐसा होता है आप कोई व्यक्ति को स्माइल देते हैं, वो स्माइल देता बड़ी सीरियस सा रहता है। कई बार ऐसा होता है आप अगले व्यक्ति को बहुत स्नेह देते हैं परंतु वो आपकी
वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता,
रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं करता। ऐसे वक्त पर आप कहते हो मैं तो इतना कर रही हूं, अब अगले रिस्पॉन्ड ना दे तो मैं क्या करूं? बाबा कहते नहीं, आपको उसको देते जाना है, जब तक वो आपका स्नेही ना बन जाए देते जाए। तो स्नेही बनाना है, स्नेही देते 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 उस आत्मा को स्नेही बना देना। मान लो वो सूखा दरिया है, हर्जा नहीं, लेकिन आपके पास तो है ना, आप दो ना, आप दे करके उसको स्नेही बना लो। स्लोगन है ना, न दुख दो न दुख लो, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है।
आने नहीं देना अपने तक। एक्चुअली क्या होता है, हम उनको नहीं रोक सकते कि वो हमें कुछ कहें, कहने से नहीं रोक सकते। इट्स ओनली दैट वी हैव टू स्टॉप समवेयर, लेट इट नॉट रीच अस।
अच्छा, कई लोग ये सवाल करते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी, कि हम दुख तो नहीं देते हैं,
तो हमारे पास दुख क्यों आता है?
तो कोई दूसरा हमको दे तो हम क्या करें, हमको कोई दूसरा दुखी कर जाता है। तो बाबा कहता, बच्चे तुमको लेना भी नहीं है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति कोई चीज दे रहा है और वो आपके काम की नहीं है तो आप क्यों लेते हो? वो दुख दे रहा है, आप समझ भी रहे हो वो दुख दे रहा है, आप लो ही नहीं ना।
लेकिन हमारे बस में नहीं ना, मतलब वो लेना कैसे होता है? ज्यादातर लोग जब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम ले थोड़ा रहे, फिजिकली तो हम कुछ नहीं ले रहे, लेकिन वो उनका स्टेटमेंट आते ही इट जस्ट हमारा वो जहां रिएक्शंस शुरू होते हैं, चाहे हम बाहर ही नहीं भी करें, अपने आप को कंट्रोल कर लें, लेकिन वो रिएक्शंस जो है वो अंदर तो हमें पूरी तरह से हिला देते हैं।
आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मैं यही हूं,
उन्होंने जो कह दिया वही
वही हूं। अब वो तो मैं नहीं हूं ना, वास्तविकता रियलिटी क्या है, मैं वो नहीं हूं।
उसी वक्त हमें शिफ्ट करना चाहिए आई थिंक अपना माइंड सेट।
ऑफकोर्स, मेरे को वो महात्मा बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी लगती है कि जो शिष्य उनको आकर के बहुत गालियां देके गया, तो दूसरा शिष्य साथ बैठा था, उसने कहा आपने इस व्यक्ति को कुछ भी कहने से हमें भी रोक दिया, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज दे और आप न लो, वो किसके पास रहे?
उसी के पास रहे।
ठीक इसी रीति से जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं हूं तो नहीं है, और सच्चाई की बात यह है कि जब मैं वो नहीं हूं तो मैं एक्सेप्ट क्यों करती हूं? और अगर मैं वो हूं जो वो कह रही है तो भी मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, तो क्योंकि मैं तो हूं
ही वैसी। फिर अगर मुझे लगता है कि वो गलत हूं तो फिर वो बदलाव करना चाहिए।
आई मस्ट चेंज, आई मस्ट ट्रांसफॉर्म। दूसरा, मेरा कंट्रोल अपने ऊपर है, दूसरे पर तो नहीं है ना,
सिचुएशन पे ना लोगों पर।
दूसरा, जो मर्जी कहे जो मर्जी गाए, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैंने अपने आप को संभालना।
लेकिन फिर मैं उसके प्रति सद्भावना क्यों रखूं? यहां बात ठीक है, बाबा ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि अगर ठीक है मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो मुझे जो भी कह रहे हैं मैंने नहीं लिया, ठीक है मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन फिर मैं, मेरे साथ उन्होंने गलत किया है, तो मैं उनके प्रति सद्भावना या शुभकामना क्यों रखूं?
सद्भावना ये रखो, ही प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, इसको सद्बुद्धि मिले जो कि ठीक ठीक बात बोले।
और दूसरी तरफ ये, क्योंकि हमारी अपनी पहचान तो मुझे मालूम है वो ज्ञान में नहीं है,
वो नहीं है, तो उसको छोड़ ही दिया जाता है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ तो आप लड़ाई नहीं करोगे ना, छोटे बच्चे को छोड़ दोगे, चाहे वो जितनी मर्जी गलती कर ले, छोड़ ही देना पड़ता है ना। ऐसे उस समय उस व्यक्ति के पास वो नॉलेज है ही नहीं ना, ज्ञान नहीं है, तो छोड़ देने में ही भला है। ठीक है, मैंने अपने आप को दुखी नहीं करना। इससे भी ऊपर बाबा एक बात और कहते हैं, सुख दो सुख लो। हमें अपने चार्ट में ये चेक करना है डेली, न दुख दो न दुख लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मैंने आज किसी को सुख दिया? ये जरूर,
बिल्कुल,
इससे मेरा अकाउंट प्लस में जाएगा।
इनफैक्ट ये मेरे जीवन का मकसद भी है।
yes.
शायद यू नो, क्योंकि आज हम जब सारा टाइम, बहुत सारे लोग हमें से पूछते हैं कि मेरा एम क्या है लाइफ में, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए हूँ, तो शायद यही मकसद लेकर हम आए हैं।
सुख दो। ठीक है, और आगे चले, फिर बाबा कहते हैं, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। दुख भी दिया ना तो भी बाबा के, तो उसको सुख की स्मृति से ही देखो। बड़ी चीज है
सुख की स्मृति में, मैं कि मैं उस सिचुएशन में कोई सुख सोचूं।
फिर बाबा कहते हैं, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है। व्हाट अ वंडरफुल पॉइंट। वो पहले ही गिरा पड़ा है, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होकर के दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम.
यस डेफिनेटली.
वो तो बेचारा है ही नहीं, उस स्टेज पर ही नहीं है, और आपने उसने दुख दिया और आपने उसको रिटेलिएट कर दिया और बदले की भावना रख दी. फर्स्ट टू थिंग्स, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट. और ही बाबा कहते हैं तुमने उसको गिरा दिया तो बेचारे को कितना और ज्यादा दुख पहुंचेगा. इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप से शुरू करो, चैरिटी बिगिंस एट होम. पहले मैं परिवर्तन करूं तब मैं उस आत्मा को कहूं कि आप भी परिवर्तन करो. और आजकल देखा यह जाता है कि कहने से कोई नहीं बदलता. आज सब कोई क्या चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल देखें ना, एग्जाम्पल होना चाहिए ना. तो अगर मैं अपना एग्जाम्पलरी बिहेवियर ये दिखाती
हूँ, डेफिनेटली. तो हम कह तो देते हैं कि ऐसा करो, लेकिन बार बार ये कहते हैं कि खुद की सिचुएशन आएगी तब आप करके बताओ. तो बात
कहते हैं ना, अपने तन से लगेगा तब इसको पता लगेगा, खुद से गुजरती तब पता लगता है. तो बाबा हम बच्चों को इस बात पर शिक्षा देते हैं कि बच्चे आपको कुछ भी हो जाए, जो आपके बेसिक संस्कार है ना, आप देखेंगे सारी मुरली के अंदर बाबा ने जो हमारी बेसिक कोर वैल्यूज जो है ना उनको स्ट्रेंथन करने की शिक्षा दी है. कि आपकी बेसिक कोर वैल्यू क्या है, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ये आप हैं. रियलिटी में आप ये हैं और आपने इसको ही
हाईलाइट करना. बिल्कुल, बहुत सुंदर आशा बहन. और आज जो एक शुरुआत हुई है कि किस तरह से ये जो बेसिक वैल्यूज, प्रॉब्लम यही तो आ रही है. आज हमने ज्ञान तो ले लिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये सब लोगों तक पहुंच गई हैं बातें कि क्या है हमारी अपनी सच्चाई, परमात्मा की पहचान, काल चक्र के ऊपर भी बात हो गई, जीवन के वो छोटे छोटे आस्पेक्ट्स भी ले लिए. लेकिन अब मुरली के रूप में सीधा एक एग्जाम्पलीफाई करके बातों को किया जा रहा है कि किस तरह से उसे सही रास्ते पर लेकर आना है. आज तक हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि प्योरिटी है क्या. तो आज बाबा की इस मुरली से ये हमारे सामने आती है बात कि प्योरिटी क्या है. आज आप हमारे साथ शामिल रहे और इस नया जो आगाज शुरू हुआ है, जो आगाज हुआ है उसमें आपने हमारा साथ दिया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. और मैं सभी दर्शकों से भी आज हम यही कहेंगे कि हम हर बार यही कोशिश करते हैं, जो हर रोज का सूत्र है, मुरली में रोज हमें कुछ ना कुछ मिलता है. तो वो सब दर्शक जो सेंटर्स पर नहीं जा पा रहे हैं अभी भी, या इस कार्यक्रम के माध्यम से मुरली आप तक पहुंच रही है, आज बाबा ने कहा है कि सदा और सर्व के लिए, हमेशा और हर एक के लिए सद्भावना और शुभ कामना अपने मन में रखनी है. और हर बार हमें ये याद रखना है सिचुएशन को. इसलिए आशा बहन ने भी कहा है कि चेक करते जाओ, क्योंकि चेक से ही शुरू हुई थी आज की मुरली. चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अनुभव में नहीं उतरेगा परिवर्तन नहीं होगा. कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में है, आपका हम स्वागत करते हैं. ब्रह्मा कुमारी इसके लगभग 8,000 से ज्यादा सेंटर्स देश विदेश में फैले हैं. आपके अपने नजदीक के सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, you call us on 09999744555.
Awakening with Brahma Kumaris का ये सफर आगे भी चलता रहेगा. आज इतना ही, विदा लेते हैं. ओम शांति.
Om Shanti.